नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत और विनेश फोगाट को बड़ा झटका लगा। उन्हें 50 किलोग्राम कैटेगरी के ओलंपिक फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। दूसरे दिन 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल से पहले उनका वजन तय मापदंड से अधिक पाया गया। इस तरह वो मेडल से वंचित रह गई। विनेश ने मंगलवार रात को इस स्पर्धा में फाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया था। अयोग्य घोषित होने का मतलब है कि उन्हें पेरिस से खाली हाथ लौटना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वजन अधिक पाए जाने पर पहलवान आखिरी तालिका में अंतिम स्थान पर रहता है। विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक के लिए प्रबल दावेदार और दुनिया की नंबर एक रेसलर जापान की यूई सोसाकी के खिलाफ उलटफेर करके अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद यूक्रेन और क्यूबा के पहलवानों पर शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उनका सामना अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से होना था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय मुश्किलों में हैं। वो अपने देश से निकाली जा चुकी हैं, भारत में छिपकर रहने को मजबूर हैं और ब्रिटेन जाने की कवायद में दिख रही हैं। अब एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो सभी को सोचनी चाहिए, बात चाहे हसीना की हो या फिर भारत के भगोड़े नीरव मोदी या फिर विजय माल्या की, आखिर इन सभी को सिर्फ ब्रिटेन ही क्यों भागना होता है? अब इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ भारत के लोग ही ब्रिटेन नहीं भाग रहे हैं। हर देश का बड़ा आदमी अपराधी सिर्फ ब्रिटेन जाने की होड़ में दिखता है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो तक शामिल हैं। एक आंकड़ा बताता है कि 2013 से 2018 के बीच में 5500 भारतीयों ने ब्रिटेन में शरण की अपील की थी। असल में यूरोपीय कन्वेंशन के मानवाधिकारों को लेकर जो नियम होते हैं उसमें ब्रिटेन की तगड़ी श्रद्धा है। ब्रिटेन उन सभी नियमों को सख्ती से मानता है। इसी वजह से सभी भगौड़ों और दूसरे बड़े लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पहुँचा जाए तो आसानी से प्रत्यार्पण नहीं हो सकता। ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि अगर उसे लगे कि शरण लेने वाले शख्स को अपने देश में जान का खतरा है, उसे वहाँ पर टॉर्चर किया जा सकता है, उस स्थिति में वो उस प्रत्यर्पण पर रोक लगा सकती है। यही राहत इन भगौड़ों को और कुछ बड़े नेताओं को रास आ जाती है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी तक नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या को भारत क्यों नहीं लाया गया है। अगर इसे शेख हसीना के केस से समझने की कोशिश करें तो उन्हें भी इस बात का एहसास है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ केस चल सकता है, उन्हें जेल तक में डाला जा सकता है। ऐसे में उस कार्रवाई से बचने के लिए वो ब्रिटेन में शरण लेना चाहती हैं। वहाँ पहुँचकर वो आसानी से साबित कर सकती हैं कि बांग्लादेश में उनकी जान को खतरा है, ऐसे में उन्हें बाहर ना भेजा जाए। वैसे ब्रिटेन इस वजह से भी भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की पहली पसंद है क्योंकि वहाँ पर इन तीनों ही देशों के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। इस समय ब्रिटेन में ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें आराम से मिनी इंडिया तक कहा जा सकता है। वहाँ पर भारत का खाना भी मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे में वहाँ जाकर ये लोग आसानी से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये भी समझने वाला है कि कई सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया है। उनकी गुलामी की वजह से ही जो इंग्लैंड के कानून रहे हैं वैसे ही कानून भारत में भी देखे गए। जानकार मानते हैं कि भारत और ब्रिटेन की कानून प्रणाली एक समान है। ऐसे में जो वकील भी होते हैं उन्हें दोनों देशों के कानून की अच्छी खासी पकड़ होती है। इस वजह से भगौड़ों को काफ़ी मदद मिलती है। हर तरह से कानूनी दाव पेंच लगा कर वो खुद को सुरक्षित कर पाते हैं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसे लेकर बुधवार को दो बिल लोकसभा में पेश करने की तैयारी है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। वक्फ कानून में से सेक्शन 40 को खत्म किया जाएगा। इसे सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। इसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। इससे पहले सबसे बड़ा 2023 में किया गया था। तब वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति छीनने के असीमित अधिकार दिए गए और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। मोदी सरकार वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने जा रही है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्र सरकार जो बदलाव करने जा रही है उसके मुताबिक अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद निर्धारित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर को अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। नए विधेयक में अधिनियम में जिला कलेक्टर को शामिल किया गया है और इस पद को वक्फ अधिनियम से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं। नए विधेयक में जिला कलेक्टरों को वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार दिया गया है और कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो उसे अधिकार क्षेत्र वाले कलेक्टर को भेजा जाएगा जो उचित समझे जाने पर जांच करेगा और निर्धारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। नए विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। वहीं 2 महिलाएँ भी अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।